الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. انسان کو اس دنیا میں آنے کے بعد جو چیز سامنے موجود ہے اس کو جتنا بہتر سمجھ سکتا ہے اس کی دنیا کی زندگی اس کے مطابق زیادہ آرام دہ اور سکون کی ہو سکتی ہے. اس بات میں کسی کو انکار نہیں کہ آپ جتنا مادے کو میٹر کو بہتر سمجھ سکیں گے اس کو اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے بہتر استعمال کر سکیں گے, جس کے نتیجے میں زندگی کے آرام کی سہولتیں جو بھی فراہم ہو سکتی ہیں وہ بڑھتی جائیں گی. آپ پورے انسان سے لے کر اب تک اگر دیکھیں تو یہ دنیا کی زندگی اور معیار کا بلند ہونا کسی کے مرحوم میں ملا ہے, کسی کے سبب ہوا. یہ انسان اپنی عقل کو کام سے جاتے ہوئے موجودہ چیزوں کو بہتر سے بہتر سمجھ سکا, جس کی نتیجے میں اس کا معیار زندگی بلند ہوتا. اب بحث یہ ہے کہ معیار زندگی تو دنیاوی چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھنے کے نتیجے میں بہتر ہو سکتا ہے. آپ کی سائنس ترقی کرتی ہے, سائنس کے ذریعے سے ٹیکنالوجی پیدا ہوتی ہے, ٹیکنالوجی آپ کے آسائش کے سامان کو فراہم کرتی ہے, اس سے آپ کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے. ہر دور کے حساب سے ٹیکنالوجی ایک لیول کی تھی, ہر سیولائزیشن ہر ملک میں ایک لیول کی ٹیکنالوجی رہی. جب کوئی اور ملک اس لیول کو آگے بڑھا دیا عموماً یہ ہوا کہ وہ ملک دوسرے ممالک کے اوپر اثرات ہوا اور ہفتہ اس کو کنٹرول کرنے لگا, قبضہ کر کے یا انڈائریکٹلی. یہ جو ابھی تک میں نے گفتگو کی اس میں کوئی ایک فیصد بھی شک نہیں ہے, مگر آیت میں نے ابھی تلاوت کی الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. اس آیت کے معنی کو اگر ہم دیکھیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ بھیجی گئی ہے متقین کی ہدایت کے لیے, جن کی خوبی کیا ہے سب سے پہلی الذین یؤمنون بالغیب. یہ اللہ کو گفتگو چھیڑ رہا ہے, یہ حاضر سے نکال کے غائب کی طرف لے جا رہا ہے. جب تک دنیا کی چیزوں کو سمجھنے کا مسئلہ رہا انسان اس کو سمجھتا گیا آگے ترقی دنیا کی حیثیت سے کرتا رہا, مگر دو چیزیں اس کی زندگی میں فقط مادے کو اسٹڈی کر کر اس کو بہتر سمجھنے کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوئی. ایک کہ یہ جو دولت اضافہ ہو رہی ہے ٹیکنالوجی کے ڈیولپمنٹ سے, سائنس کے آگے بڑھنے سے, اس کا کس کو کتنا حق ملنا چاہیے, کس کو کتنا اس کا حق ملنا چاہیے, جس کو انگریزی میں ڈسٹریبیوٹو جسٹس کہتے ہیں. یہ ہمارے اگر مذہبی اجتماع میں اگر دیکھیں تو اس کو عدل و انصاف اجتماع میں برپا کرنا, یا قرآن کی اگر ہم اجتماع کو وہ کریں عدالت برپا کرنا, یہ سوال معاشی ترقی کے ذریعے سے حل نہیں ہوا. ہر وہ آدمی جس کو پہلے وہ معاشی ترقی کے اوپر کنٹرول آیا, جس کو آج کے زمانے میں ہم پیٹنٹ کہیں گے, پیٹنٹ رجسٹر ہونے لگے, لوگ اس کے اوپر اپنا اختیار جتانے لگے, تو ان کی زندگی کا معیار یا ممالک کی زندگی کا معیار بڑھتا گیا, اور وہ ممالک وہ کنٹریز جس کو ان کی ضرورت کی چیزیں فراہم کرنا تھا ان کا معیار زندگی نہیں بڑھا. آج افریقہ کی حالت دیکھ سکتے ہیں, اکثر ایشیا کے ممالک کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں. باوجود اس کے کہ یہ 100 سال میں جتنا سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کیا, پوری بڑے انسانیت کی ترقی اتنی نہیں ہوئی, اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنا ٹیکنالوجی کا فائدہ اس دور کا انسان لے کر رہا. خصوصاً اگر ہمیں 25 سال کو لے اور کمیونیکیشن کو اور دوسرے چیزوں کا جو ایڈوانٹیج ہو رہا ہے وہ مسئلہ نظر رکھیں, تو اس حساب سے دیکھا جائے تو شاید وہ 100 سال میں جو فائدہ ہے 75 سال میں وہ 25 سال کے بعد میں زیادہ پہنچے. अब मेरा ये होता है कि सब तरक्कियों का नतीजा अगर एक तरफ पैसों की ज्यादती और उनके ऐसे रिश्वत का सामान प्रारंभ करने दुनिया के अक्सरियत की कुर्बानी, तो ये किस तरीके से हल हो, इसका हल मानवीय साइंटिफिक तरक्की से मुमकिन नहीं था। एक दूसरे के अगर इंसान मानवीय तौर पर ये सब चीजों को जान लेता है तो आया उसके खुद के सुकून का सबब बन सकता है। क्या है ये इंसान खुद इस बात के लिए काफी है कि इंसान को और कोई अपने अंदर कमी का एहसास नहीं होगा, हर आदमी अपनी मर्जी के हिसाब से खाएगा पीनेगा, तो क्या उसको पूरा कानून सुकून का इतना मिल जाएगा या ऐसा नहीं। ये दूसरा सवाल भी मानसिक तरफ ने हल नहीं किया। आज जितनी जहन को सुकून देने वाली दवाएं उन ममालिक में बिक रही है, जो तरक्की आता है उतनी हमारे ममालिक में नहीं बिक रही। हम भी उन्हीं की तरफ जा रहे हैं, हो सकता है कि हमारे यहां भी उतनी ही बिकना शुरू हो जाए, लेकिन फिलहाल नहीं बिक रही। फिलहाल प्रॉब्लम हमारे मेंटल लेवल के कम है। अब सवाल ये होता है, अब जब ये मेंटल लेवल की चीजों को सुकून मानवी तरक्की से नहीं मिल रहा है और दूसरे इंसाफ का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, जो पैसे वालों के लिए उनके हैश का सामान महंगा किया जा रहा है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन 300 से 500% चल रहा है। अगर लग्जरी इंडस्ट्री की आज अगर स्टडी करेंगे, जो लग्जरी इंडस्ट्री होते हैं जो करोड़पतियों को उनके हैश का सामान फराहम करती है, चाहे वो उनकी बजा का हो, चाहे वो उनके कपड़े पहनने के हो, चाहे उनके इत्र हो, चाहे वो और कोई चीजें जो उनको जरूरत है, तो एक दुनिया में डिजाइनर ड्रेस के आधार होते हैं, ये जरूरत तौर पर कपड़े डिजाइन किए जाते हैं, पहने जाते हैं, तो ये सब चीजें जो है एक तरफ बढ़ रही है। दूसरी तरफ ओवरऑल देखा जाता है तो हम देखते हैं कि आज इतना गरीब अपनी सेहत के लिए परेशान है और उसको सेहत की बेनफिया ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो वो सेहत उसको आसानी से नहीं मिल रही। तो आज 30 साल पहले जैसी भी टेक्नोलॉजी की होगी वो था मिलती। दूसरे एजुकेशन, गरीब के बच्चे को एजुकेशन उस दौरान में आज से 30-35 साल पहले मिल जाता था गवर्नमेंट स्कूल के जरिए से, वो भी आज बहुत कोई असर नहीं है। ना हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में फिर भी तरक्की आता है। आप अगर जाकर दूसरे और कंट्रीज की तरफ देखें तो वहां पर तो और भी ज्यादा परेशानियां। अब जब ये हालात बन रहे हैं और इंसान को मानवीय सुकून नहीं, मानवीय के फराहम होने से वो सुकून नहीं मिल रहा है, तो वो कौन सी चीज है कि जो इंसान को इस दुनिया में साथ ही उसका सुकून फराहम करे और इज्तमाही सतह पर उस सुकून के नतीजे में वो एक सतह की अदालत बर्पा कर सके, जो उसके अंदर से निकले बाहर से छोपी न जाए। कम्युनिस्टों का एक्सपेरिमेंट था, वो यह था कि हम अदालत को इंसान के मर्जी के खिलाफ उसके हालत में ठोस सकते हैं, पता चला कि वो ठोसी नहीं जा सकती। आज चाइना जैसे मुल्क में भी जो बिलियनर ज्यादा होते जा रहे हैं, हम बच्चों की तादाद बढ़ रही है, इस बात की दलील है। और इस वर्तमान ओलंपिक्स के सबसे ज्यादा मारूफ शख्सियत थी, वो एक उनका जिमनास्ट था या कोई और खिलाड़ी था जो बिलियनर हो गया, उसको उन्होंने गवर्नमेंट के हाथ पर पेश किया कि हमारे मुल्क में अरबपति बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए कोई रुकावट नहीं है। जैसा कि आदमी के जो आदमी जो ट्राइड करने का या किस्म का उसको जो है इजाज़ दिया गया। अब हम ये देख रहे हैं कि अब अगर जबरदस्ती पहुंचा नहीं जा सकता इंसान को अदालत करना, और दूसरे उसके खुद के सुकून के लिए भी मात्रा एक पॉइंट के बाद फायदा नहीं पहुंचा था, तो अब यहां के ऊपर एक बहस भी आती है कि इंसान करे तो क्या है, इंसान करे तो क्या है। अब यहां के ऊपर सिलसिला नबूवत के या रिसालत के होने का शुरू होता है। इंसान जब इस हरकत में मुब्तला होता है तो हर इंसान ये मानसी हरकत में मुब्तला नहीं होता। कुछ लोग इस दौरों से अपने आप को अलग करके पहुंचते हैं, कुछ लोग अपने आप को इस दौर से अलग करके सोचते हैं कि हमारी हकीकत क्या है और हम अगर यहां पर हैं तो किस उन्वान से यहां पर आए। उनकी काम करने लगता है कि वो उनके लिए हाजिर नहीं है, उनके सामने नहीं है। मुझे क्यों बनाया गया, मुझे कैसे बनाया गया, मैं उससे आया हूं या मकसद से भेजा गया हूं, यह समाधान कोई भी हाजिर से चालू नहीं करते। मानते पर आप चाहे कितना भी सफल पैदा कर ले, आपको इन सवालों का जवाब मिलने वाला नहीं। तो अब अगर हमको इन सवालों के जवाब की तरफ तवज्जो करना है तो ये फिक्र इंसानी वो सलाहियत रखती है या नहीं कि इनके जवाब को ढूंढ निकाले, इनके जवाब को ढूंढ निकाले। अंबिया वो लोग होते हैं कि इन जवाब को ढूंढ निकालते हैं, इन जवाब को ढूंढ निकालते हैं और वह पर ईमान लाते हैं। वो चीजें जो सामने नजर नहीं आती, और ये किताब जिसकी हम बात कर रहे हैं तो मैं बता किस तरह है किलाएगा कि मुदल मुस्तकीम करते क्या है नदीना यू मिलू ना मिल रहे। ईमान लाते हैं भय पर, ईमान लाना भय का मतलब यह है कि भय उनके लिए महसूस है, यानी देख रहे हैं। वो भय जिसके ऊपर ईमान लाते हैं एक सुपरस्टिशन की ईमान से नहीं लाते, एक यकीन और नदीम और बैना की बुनियाद पर लाते हैं, एक प्रूफ की बुनियाद पर लाते हैं कि जो उनके लिए जाहिर से ज्यादा वाजे होता है। कुरान में जो अल्लाह के तरह से कहा जाता हुआ जाहिर हुआ बातिन, अल्लाह जाहिर भी है और बातिन भी है, तो अल्लाह का जाहिर जो रूप शक्ल तो वैसे नहीं है, अल्लाह की निशानियों के जरिए से जाहिर ही हम उसके जुहूर को पहचानते हैं कि हर चीज से उसका जुहूर नजर आ रहा है, एक पत्ते में, एक कंकर में, एक सूरज की किरण में, हर चीज में अल्लाह का जाहिर होता है, एक अल्लाह का बातिन होता है कि जिसको कायनात का भी बातिन कहते हैं, उस पर भी ईमान लाना जरूरी होता है तो फिर गायब होता है। तो अल्लाह कहता है अव्वल व आखिर व ज़ाहिर व बातिन, वो पहला भी है आखिर भी, ऐसा ना समझना कि वो बनाया छोड़ दिया, ऐसा पहला नहीं है कि जो खड़े होकर कोई बहुत को रोल कर दिया हो, भारत उससे जितना दूर जाते जाएगा तो अवल वो बहुत तक और नहीं पाएगा। हम जैसे जो रहे बहुत से सिक्के रहे दुनिया के राजस्थान ले लें तो हर रोज जितना वक्त गुजरता जा रहा है उस फेंकने वाले से दूर खोते जा रहा है, उससे क्या बेहतर चीज हो सकती है कि जितने दूर हो गए उतनी मुश्किल से पकड़े जाएंगे, जितनी दूर हो गए उतनी मुश्किल से पकड़े जाएंगे। हम बच्चा किसी चीज से निकल जाए भाग जाए, गुलाम जो है जो अपने हालात से बाहर करे तो जितना दूर भागता रहेगा उसको इतना रहेगा हालात के घर से 10 किलोमीटर पास में कहूँ या 50 किलोमीटर पास में दूर तो पता नहीं जाएंगे कि कैसे कम होते जाएंगे। तो यहाँ के ऊपर ये वाला विचार नहीं है, अल्लाह के कारण के जितना भी जो है मेरे साथ ही भागने वाले हैं। अगर हाथ की तरफ भागो तो थोड़ा हाथ की तरफ ले जाता हूँ, और अगर बुराई की तरफ जाना चाहते हो तो फिर बुराई की तरफ भी नहीं जाना, मुझे आता कि अल्लाह के लिए बहुत आता है कारण ये दोनों आए थे हमको मिल जाती है। तो अब सवाल यह होता है कि जो अंबिया जिसकी हम बात कर रहे हैं उनको ईमान व यकीन पैदा हो जाता है राय पर, वो किस शक्ल से जाहिर होता है? रसूल को या किसी नबी को ईमान एक तो फितरी चीज है जो हर इंसान में, वो फितरी चीज का नतीजा इंसान के खुद के कन्विक्शन में, खुद के यकीन में कैसे तब्दील होता है। फितरत के हिसाब से हम सब अल्लाह की गवाही देने के हिसाब से बनाए हैं, सवाल ये हम में से हर क्या वो गवाही देने के काबिल है या नहीं। हम भी ना वो लोग हैं कि जो ये गवाही देने के काबिल हो जाए, आमन रसूल ईमान है देखा बात अगवानी देखा हुआ फितरत का ईमान था उनके पास, बोले नहीं फितरत का ईमान तो तुम्हारे पास भी था, फितरत का ईमान उनके पास भी था। ये अपना दुनिया में रहते हुए हाजिर में मुब्तला होकर माजी दुनिया में डूबने के बाद अल्लाह की तरफ निकल कर अल्लाह का इकरार कर लेना, उसको हम कहते हैं ईमान लाना। और उसी ईमान से जारी हुआ लगना आमनू कहा जा रहा है, फितरत के ईमान की बुनियाद पर नहीं कह रहा है, तो कहा फितरत के तौर पर होंगे। तो अब जब ये ईमान अपनी शक्ल पैदा करता है तो मैं रसूलों की मिसाल इसलिए दे रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये बात अल्लाह ने रसूल को वही के जरिए से समझ رسول نے بغیر ایمان کے منتقل کیا یا اللہ نے کسی کو بھی چاہا تو منتقل کر دیتا تو رسول مانا اللہ کا کیسے پاس ہوئے کہ اگر آپ کو ہم کو کسی کو بھی مل جاتی تو ہم بھی کسی بولنے لگتے موقع کی بات تھی کہ رسول کو اللہ نے کیسے کار بنا کیا ویسا نہیں ہوا حقیقت یہ ہے کہ ان حقائق کو جب رسول نے پا لیا تب رسول کو اس کی بستی شکل دی گئی قرآن کی کئی آیتیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں ایمان رسول کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر رسول ایمان بناتے ہوتے اور رسول ان باتوں کو پوری طریقے سے نہ سمجھ لیے ہوتے پوری طریقے سے اسیمیلیٹ نہ کیے ہوئے ہوتے تو پھر وہ وہی رسول کے ذریعے سے بھیجی جانی ضروری ہے کہ کسی کے ذریعے سے بھی بھیجی جا سکتی رسول کے ذریعے سے بھیجے جانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو وہ بلندی حاصل ہوئی کہ جہاں کے اوپر ان کا ذہن ان حقائق سے سنکرونائز ہو گیا ایک لیول پہ کام کرنے لگا جب وہ اونچے لیول پہ کام کرنے لگا تو شروع سے گفتگو ہو رہی ہے قرآن میں اس سے میں آگے بڑھ رہا ہوں پہلی بھائی کے عنوان سے نہیں بڑھ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہوں مطلب الحمد للہ رب العالمین ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین انسان اس سطح پر پہنچ گیا جہاں کے اوپر اس کی زبان کے الفاظ ایمان کی شکل بن کے نکل گئے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اللہ کا کلام ہے نکل رہا ہے رسول کے منہ سے اس حالت میں رسول کا ایمان کمپلیٹ اس بات پر ہے اللہ کی تعریف جو رب العالمین تھا رسول کے بولنے کے پہلے بھی تھا کیا اس مرحلے تک اللہ رب العالمین نہیں تھا رب العالمین تھا پھر یہ رسول جو بول رہے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے یہ رسول اپنے ایمان کی ایک جھلک دکھا رہے ہیں کہ جو رسول ہونے کے ناطے اللہ پسند کرتا ہے کہ لوگوں تک پہنچے ورنہ رسالت کا مفہوم بھی ختم ہو جائے گا اگر رسالت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ایمان اپنا رکھے اور اس کو سجدوں کے ذریعے سے اور عبادتوں کے ذریعے سے ختم کر دیں اور دنیا سے رخصت ہو کر چلے جائے اس کو رسالت نہیں بولتے رسالت اس کیفیت کا نام ہے جہاں پہ اللہ کی بلندی کو حاصل کرنے کے بعد انسان اس درجے پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے اس کے منہ سے اللہ کی باتیں نکلتی ہیں اس شخص کے ساتھ اس نے اس پر پورا ایمان لایا تو زبانی جواب کی بات نہیں ہے رسول کے زبان سے الگ نکل رہے ہیں محمد اللہ نے کہی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم کون سا ہوتا ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے مالک یوم الدین اس کا اعتبار ہم پر کامل ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر بنایا اور وہاں پر رکھ دیا اس کے بعد ہم آزاد ہو گئے یہ پوری کیفیت رسول کے ذہن کے اوپر کامل ہوتی جا رہی ہے الفاظ آگے نکل رہے ہیں اللہ کے الفاظ آگے ہم کو اس میں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اس کیفیت پر یقین کر لیں غیر پر اس عنوان سے ایمان لائے کہ یہ گفتگو جو ہو رہی ہے وہ اللہ کی مرضی کے علاوہ نہیں ہو سکتی ہمارے ہوگا یہ بے شک بغیر وحی سے ہوتی نہیں ہے یہ بات قرآن بتا رہا ہے دیکھ لو کہ گفتگو کی سطح وہ نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ کوئی شیطان نے یا اللہ نے یا حضور نے کسی کے ذہن میں ڈالا ہے یہ جب ممکن ہوتا ہے جب انسان اپنی کمزوریوں کو اپنے معاشرے کی سوسائٹی کی کمزوریوں کو سب سمیٹ کے باہر کی دنیا کی طرف سفر شروع کرتا ہے اپنی فائدہ سے بدتانی کو دبا کر اپنے آپ کو کنٹرول کر کر یہ ڈھونڈتا ہے کہ میں کوئی بھینس بکری کی طرح چلنے کے لیے دنیا میں تھوڑا نہیں کر رہا ہوں بلکہ میرے اندر اور بھی کچھ خوبیاں ہیں جس کو اگر میں حاصل کروں تو مجھے بھی وہ بلندی حاصل ہو سکتی ہے جو گزشتہ کے بلند لوگوں کو حاصل ہوئی ہے اور دنیا میں جو کمزوریاں ہیں عدالت کی کمی انسان کے دلی سکون کا کی کمی انسان کی دوسری پریشانیاں آپس میں خاندانوں کا ٹوٹنا یہ سب چیزوں میں جب نظر پڑتا ہے تو یقین کرتا ہے کہ اس انسان کو بنانے والے نے یہ چیز اس عنوان سے نہیں بنائی ہے اس کا ڈیزائن کرنے کا پرپز اس کا ہمیں بنانے کا پرپز بالکل کچھ اور اس چیز کیفیت کو جب حاصل کر لیتا ہے تب وہاں کے اوپر یوں ملونا جو غیر کی بات آتی ہے اور جب یہ غیر کی طرف اپنا سفر شروع کرتا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا اللہ جینا جہاں پینا نہ یہ مانا رکھتا ہے کہ وہ لوگ ہم میں کوشش کرتے ہیں पीना हमने कोशिश करते हैं, यानी उस गैर के सफर को तय करना पसंद करते हैं। दुनिया की जिंदगी से राजी बहुत अधिक हो गया है, दुनिया बना नहीं करा पर इस बात पर कहा है तो दुनिया की जिंदगी से राजी हो गई। अब क्या हमारे साथ किया है, तुमको जो बिमरा है यहाँ पर खाने पीने और दूसरे किस्म का है तो उस पर राजी हो गया। तुमने सोना का नाम कैसे कहा है, जहाँ रसूल से कहा जा रहा है रसूल जहाँ करो उनके साथ के जो दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं। पूरा किया मतलब यह है कि यह आदमी जो दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देगा दुनिया में भी डूब मरेगा, और जो दुनिया में ही डूब मरेगा वो उससे तय की उम्मीद ऐसे दूर नहीं रखी जा सकती। हो सकता है जहां पैसा बैठा हो जाए तो कभी शायद घर को अगर सही बोलिए कोई ऐसी कोई बस में प्लेन की बात नहीं करता हूँ, कोई ऐसी बस में भी सवार होना पसंद करता है जिसका यकीन नहीं है कि जाएगी या नहीं जाएगी, कभी चलेगी कभी रुकेगी कभी चलेगी कभी रुकेगी, बंद हो रहा हो प्लेन की बात नहीं कर रहा हूँ। बात की दलील है कि उनमें भी फितरत है, ये खुदा के होने की दलील बनती है ना कि खुदा के नामों की दलील बनती है कि कोई खुदा को नहीं मानने वाला अगर नए अमल कर ले कभी कभी होता है। कभी कुछ दीन के मानने वाले ये सत्ता हमासत करते हैं कि आदमी यकीन करने लगता है कि भाई दीन के बाद हमासत अगर हो रही है ये बुराई हो रही है तो दीन का फायदा क्या है, और भले दीन से कुछ अच्छा ही हो रही है तो वो अच्छा ही बेटर, मगर प्रॉब्लम ये होता है इस्लामिक मुकदमा प्रॉब्लम ये होता है कि सिस्टम नहीं बन पाता, सिस्टम नहीं बन पाता जिसके नतीजे में अल्लाह के ईमान को बुनियाद बनाकर इंसान हरकत करे मानते हैं कि उसको यकीन ना हो जाए कि जो यूनिवर्सल उधर पा रहे तो मुद्दा भी होने की पहली शर्त अल्लाह ने यह रखी कि यूनिवर्सल में है वैर का सपना आपको तय करना है। वो चीजें तो आपके पहले हो गई, आपके बनने के पहले हो गई, हत्या कायनात के बनने से पहले हो गई, वो सब के सब आपसे जुड़े गए ऐसा नहीं है कि इंसान से बैठे हुए। अगर वो चीजें वैसी हुई है जैसे कि इंसान को बैर से सफर करने के नतीजे में मालूम होता है कि यकीन है कायनात का वो खुदा है, यकीन है वो खुदा है मकसद रखता है कायनात को बनाने में, यकीन है इंसानी जिंदगी एक बस पानी के आगे बोलो एक पानी का निकाल कर ढूंढे जिंदगी इंसान की जो है ऐसी नहीं बनी, इंसान को यूं ही छोड़ने के लिए पैदा नहीं किया गया। ये सब चीजें सभी है ये कोई सामने सामने आने वाली चीज नहीं है। इंसान के बनने से पहले के इरादे उन इरादों को कबूल करना उनकी हकीकत को फायल होना और ये बोलना कि इस कायनात के अंदर एक किस्म की मंजिल है किस्म की भाषी कार करना है तो हमें सबको एक हरकत की तरफ ले आ रही है और हम इस हरकत करने में मजबूर नहीं है मुक्ता है, हम चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए कोई जबरदस्ती हमको जरूरत नहीं ले जा सकता। कुछ लोगों को हो सकता है अच्छा ही करने की पोटेंशियल ज्यादा हो उसमें कम हो लेकिन यकीन कोशिश के नतीजे में जो लोग हासिल करते हैं वो नेचुरल पोटेंशियल के बेसिस के ऊपर हासिल नहीं होता। खेल में भी देखते हैं बहुत अच्छे पोटेंशियल के लोग रहते हैं फिजिकली है वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज नहीं करते, कम पोटेंशियल के प्लेयर ज्यादा अच्छा खेल लेते हैं। मैं मानती मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि इंसान की कोशिश की वैल्यू हमेशा कुरान में भी बतलाई है कि तुम्हारी कोशिश तुम्हारा सरमाया है, तुम्हारा सरमाया मानसी सरमाया नहीं है, मानसी सरमाया तुम्हारी कोशिश का नतीजा बनना चाहिए, तुम्हारी कोशिश को मानसी सरमाया की बुनियाद के ऊपर मत को डालो। असर हाजिर मलकुल मौत है जरा इसने हस्ती हूं तेरी लेकिन तुझे फिक्रे मना पंच असर हाजिर मलकुल मौत है तेरा जिसने हज की रूह तेरी जैसे तुझे फिक्र मार अरे पुराने मुसलमान ये जमाना नया जमाना उस जमाने में फिर अपना आज से 14 साल की बसे में बात हो रहा हूँ 80 साल का लेकिन 48 होगा कि जहां पर उस जमाने को देखकर बोल रहे हैं कि किस हद तक के लोगों को मान का और अपनी अस्थिरता की जरूरत का अपनी मान की दुनिया के लिए पीछे लगा दिया है कि उसमें रूही मत होगी वो रूही बाकी नहीं रही जो सफर आखिरत की तरफ जाए या तरजीह से दुनिया की जिंदगी पर आखिरत की जिंदगी को क्यों कि हयात की तरफ जाकर पहुंचने रहने के फुर्सत ही नहीं है। टेलीविजन पर और दूसरी जगहों पर देखने वाले मनाजिर इतने ज्यादा खींचने खेल रहे हैं कि इंसान को उसकी जरूरत ही नहीं है। बोले ये वीडियो तो काफी हमारे दादा दादा को तो ये भी नसीब नहीं हुआ है नहीं है माइनिंग अगर आएगी तो अच्छे पत्थर का हमारी जरा का भी ताकि जो है इस तरह से जो है दादा इस्तेमाल कर सकें या सलाद की हिफाजत करते हैं, तो ये सब जो सलाद की जो बात यहां पर आ रही है वो सलाद का मतलब दो रकअत नमाज या चार रकअत या तीन रकअत नमाज की बात नहीं है, वो शिद्दत है जिक्र याद खुदा, जिक्र का मतलब अरबी में याद खुदा से मुराद। और जब ये लोग पर ईमान आते हैं तो नतीजा ये होता है अल्लाह की याद उनके दिलों में शिद्दत पैदा कर लेती है और वो लोग याद खुदा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। वो सलाह आगे चलकर रसूलों की बनाने में आकर उनकी शरीयत में एक वादा उसी तरह से मेरे को यहां पर वसीयत के तौर के ऊपर एक प्रेजेंट के तौर के ऊपर एक अमानत के तौर से दिया गया है, मेरी जरूरत पूरी करूं इतना से बचूं और अगर इजाफा जो बन जाता है उसको जो है उन्होंने एक बार दूसरों का समझा दूं। तो इंसान की एक गैर पर ईमान के नतीजे में अंदरूनी खुदा की याद बन जाती है, खुदा की याद से जो है अल्लाह को जिक्र का है तमाम खुला दिल का इतना आ जाता है। उसके बाद अदालत का इंसान जो आदमी खुद रख सकता है वो चीज देने लगे तो इंसान क्यों नहीं हो, एक होता है खेलना बातें काट के लिए खेल के देना कोई नहीं चाहता, बचा बचा के देता है, छिपा छिपा के देता है, मगर यहां के ऊपर पैदा नहीं हो रहा है, यहां के ऊपर उसको खुद अल्लाह की जात पर ईमान आने के नतीजे में कि मैं उसका बंदा हूं जो मुझे देते रहता है, हर साल उसकी मर्जी से आती है उसकी मर्जी से जाती है, हर हरकत मेरी उसी की ताकत है, उसमें मालूम होता है जो हरकत कम हो जाती है हाँ मुश्किल से आती है।
जैसा की तरह जाहिर को लेना है अल्लाह की नेमत है जिसके साथ में बहुत
और इनके मुलाकात के ऊपर जो है चलने के जो है हम लोग बोलते हैं अगर गलती की परसेंटेज लेकर चलते और अलाउ करते हैं कि गलती हुई कारण के ऊपर आपके दाखिलों की बात नहीं होगी अंदर की गाइडेंस इतनी अगर परसेंटेज अलाउ करें गुनाही का तो बढ़ते 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 वो जो है इतनी बढ़ जाती कि वो गुनाही जो है अंदर बढ़ जाए कोई किसी नेता माफी नहीं होगा पहले वो अंबिया के बाद थोड़ा सा और वो ऐसे जिसको मानते हैं अल्लाह को इज्जत बनाए तो शायद नहीं छोड़ रहे हैं गर्मियों में से नहीं है से नहीं है ऐसा हिंदुओं में भी मजबूत गलत में बच्चे अपने आप को पार करने वाले भी कि मुझे पढ़ी है यहाँ जिन उन लोगों को मतलब जो है हम पैर पर से बोली रहते हैं अल्लाह ने सभी को भी रहते तो ये उम्र जो है मैंने तो रखा है अल्लाह को जो रहा है कि जहन को पार से पार लोगों की तरफ उन मत आदि की कुरान की बात बच्चों के साथ होगा और बच्चों को पढ़ने की रेगुलेशन जो है वो सुधर सकता तो ये कहते हुए जो है हम वो पूजा करने के लिए जब कोई भी बुराई अगर होती है कोई भी विदा नहीं होगा क्योंकि उनसे बच्चे हो हमारा थोड़ी थोड़ी होगा अब उसे एक जनरेशन में क्या करना अब जीत तालीम में रहे जो जो चीजें नहीं होती थी तरह तरह से एक बातें की जाने लगी बच्चे में आज भी क्या है क्या है जीव में अच्छा ही करना बंद हो गई तीन आदमी के सहारे डर नहीं रहा है नारे जो है फिर भी करा लेंगे और अच्छा वो है जो सब लोगों के साथ खड़ा खड़ा करता है न वो कि जो बोलता है जैसे की रास्ता है वो टूट के निकाल झगड़ा जी से नहीं है रास्ता मेरा ना रास्ता आपका रास्ता किसका अल्लाह असलो पहले बैठा जो यदि खिलाफ मुस्तकीम की बात है तो हमारा दिमाग है खिलाफ अली खिलाफ मुस्तकीम अली की खिलाफ अली का रास्ता तो लेने के बैठ के अल्लाह रास्ता है क्या बात अली का रास्ता लोगों को गाली देना बुरा बोलना लोगों को बुरा करने के लिए तरजीह देना है लोगों को अल्लाह के जिक्र से दूर करना है यानी अल्लाह से अल्लाह की हाथी करो तरजीह देना है मायने में लेकर शराब को करना दीपड़ों को बचना यह नहीं है चीजों का हम आगे रसूल को काम लगाते हैं ये तो आपका चाहिए सारे घरों में हजारों में रह जाएंगे शेर में उनको मामला खत्म हो जाए तो अल्लाह किसी को मिलने वाला नहीं होता जिस तक हमारा इल्मी मियार करता रहा अगर दीन बढ़ रहा हो और इल्मी मियार करता रहा हो तो फिर इल्मी मियार को बढ़ाने वाले कौन सी थी तो मतलब यह इल्मी मिला ना लेकिन थोड़ा सा
उसी दिन जैसा होगा तुम तो जहनत के बिल्कुल किनारे पर ठहरे थे हमने